कशिश ईशान के साथ नीचे आंगन में पहुंची। तब जाकर सबके परेशान चेहरों पर कुछ सुकून और राहत के भाव नजर आए। सबकी नजरें ईशान पर टिकी थी, जबकि ईशान अपने इरादों का पक्का था। उसने बाकी सबको नजरअंदाज करते हुए रजनी की तरफ कदम बढ़ा दिए। ईशान उसके पास चलाया और अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपाते हुए बोला, बधाई हो दीदी, एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब आप शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाली हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपने अपने जीजा जी के बारे में सोचते हुए शादी के लिए हाँ कह दिया। आपकी शादी अच्छे से हो जाएगी और आप इज्जत से इस घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाएंगी, तो मेरे और पापा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और चिंता खत्म हो जाएगी। हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। रजनी, जो नम आंखों से ईशान को देख रही थी, ईशान की आखिरी बात सुनकर नाराजगी से मुंह फुलाते हुए बोली, मैं जिम्मेदारी हूँ तेरे लिए? उसके इस सवाल को सुनकर ईशान ने तुरंत इनकार में सर हिला दिया। नहीं, मेरी प्यारी सी दीदी है जिनसे मेरा परिवार बनता है, पर पापा के जाने के बाद आपकी शादी करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पापा को भी आपकी चिंता रहती थी। आपकी शादी अच्छे से संपन्न हो जाएगी, आप अपने नए घर में घुल मिल जाएंगी, खुश रहेंगी, तो पापा और मुझे सुकून मिल जाएगा। धीरज जी का जिक्र सुनकर शादी के बाद यहाँ से जाने का सोचकर रजनी भावुक हो गई और उसके गले से निकला, पर फिर मुझे तुझे और सब कुछ छोड़कर जाना होगा। इसमें इतना भावुक होने वाली कौन सी बात है दीदी? कौन सा आप मुझसे सात समुंदर पार जाने वाली हैं? कुछ गली छोड़कर काका का घर है, जब चाहे चली आइएगा और मैं भी आया करूँगा ना आपसे मिलने। चलिए, इतनी खुशी का दिन है आज, आपकी शादी की तारीख निकल गई, हमें खुश होना चाहिए। ईशान ने बड़े ही प्यार से उसकी आंखों की नमी को साफ कर दिया। रजनी ने उसकी बात सुनी और हामी भरते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ, आज का दिन खुशी का है। आज पापा का सपना, उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। बड़े पापा ने अपनी नाराजगी को खत्म करके हमें वापस अपना लिया। ये परिवार वापस एक हो गया। जैसे जैसे रजनी बोलती जा रही थी, ईशान के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। कशिश, जिसकी निगाहें उन दोनों पर टिकी थीं, ईशान के बदलते भाव देखकर कुछ परेशान हो गई। फलस्वरूप उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। रजनी आगे बोल ही रही थी कि ईशान उसकी बात काटते हुए बोला, इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी। अब मेरे लिए ये सब बातें, किसी की नाराजगी या किसी का हमें वापस अपनाना, इन सब का कोई महत्व नहीं रखती। बड़े पापा मान गए, अच्छी बात है। आज पापा की आत्मा को शांति मिल गई होगी। ये बिखरा दो हिस्सों में बटा परिवार आज एक हो गया। अब सब खुश हैं। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं और ना ही इससे मुझे कोई फर्क पड़ता है। मुझे सिर्फ आपसे फर्क पड़ता है। मेरे लिए सिर्फ आप अहमियत रखती हैं। आपकी खुशी में मैं खुश हूँ, पर इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। मेरे लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला। मैं अब भी पहले जैसा ही रहूंगा, तो बार बार ये सब बातें करके मेरे जख्मों को कुरेद कर हरा मत कीजिए। मेरा और अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। मुझे ये बातें सुनकर कोई खुशी नहीं होगी, सिर्फ तकलीफ होगी। खैर, छोड़िए ये बातें, चलिए आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, खुशी मनाइए। मैं आता हूँ कुछ देर में। ईशान अपनी बातें कहकर बिना एक पल रुके सीधे घर से बाहर चला गया और पीछे खड़े सब स्तब्ध से उसे देखते ही रह गए। ईशान की बेरुखी भरी बातों ने सबको उसके दर्द और तकलीफ का एहसास करवा दिया था। उसके कहे चंद शब्दों ने ये जाहिर कर दिया था कि ठीक होकर भी अब भी कुछ ठीक नहीं हुआ है और ईशान की नाराजगी जल्दी खत्म नहीं होगी। जख्म बहुत गहरे हैं और उन्हें भरने में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। रामविलास जी और बाकी सबके चेहरे मुरझा गए। कशिश भी ईशान के यूं जाने से कुछ परेशान हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त ईशान की मनोस्थिति कैसी है और ऐसे में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, पर चाहकर भी वो ईशान को रोक ना सकी। जब ईशान उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने नजर घुमाकर बाकी सबके उदास परेशान चेहरे देखे। रजनी के चेहरे पर अब खुशी का नामोनिशान तक नहीं था, उसका चेहरा भी मुरझा गया था और परेशान निगाहें दरवाजे की ओर टिकी थीं। कशिश ने सबके उदास चेहरे को देखते हुए अपनी परेशानी को झटक कर गहरी सांस छोड़ते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे, आप सबके चेहरे लटक क्यों गए? खुशी के दिन ऐसे मातम क्यों पसर गया यहाँ? सबकी परेशान निगाहें अब कशिश की ओर घूम गई। इसके साथ ही कशिश की मुस्कान कुछ फीकी पड़ गई। उसने नम निगाहों से सबको देखा, फिर हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, आप सब मिश्रा जी की वजह से परेशान हैं। वो अभी थोड़े नाराज हैं, पर जल्द ही वो भी मान जाएंगे, इसलिए आप सब उनकी वजह से परेशान मत होइए। अब सालों की नाराजगी खत्म होने में वक्त तो लगेगा, थोड़ा सब्र कीजिए। जैसे आप सबकी नाराजगी खत्म हुई है, वैसे ही उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए आप सब उनकी चिंता छोड़िए और इस खुशी को सेलिब्रेट कीजिए। आप लोग मिठाई खाइए, मैं दूसरी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। कशिश ठंडी चाय का कप उठाते हुए शुभ्रा और शुभिका को आंखों से ही कुछ इशारा करते हुए वहां से चली गई। शुभ्रा और शुभिका ने एक दूसरे को देखा और मिठाई की प्लेट पर धावा बोल दिया। उन्होंने बारी बारी सबका मुंह मीठा करवाया और अपनी मस्ती भरे अंदाज, जुहलबाजियों, प्यारी प्यारी बातों, छोटी छोटी शैतानियों से सबका मूड ठीक कर दिया। कुछ देर में कशिश सबके लिए चाय बनाकर ले आई। सबने साथ बैठकर सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली कड़क चाय का लुत्फ उठाया। साथ ही ढेर सारी बातें भी हुईं।
सालों बाद आज मिश्रा निवास का माहौल इतना खुशनुमा था और अंदर आंगन में हंसी ठहाकों की आवाज गूंज रही थी, पर इस खुशी में कमी थी। धीरज जी तो अब इस दुनिया में थे नहीं, पर ईशान भी वहां नहीं था। उसके बिना ना ये परिवार पूरा था और ना ही उनकी खुशियां। रजनी और कशिश सबके बीच खुश नजर आ रहे थे, या शायद खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी परेशानी बाकियों के दुखों की वजह न बन जाए। पर मन ही मन दोनों ही ईशान के लिए परेशान थे। रामविलास जी भी कुछ उदास थे, क्योंकि वो ईशान की खामोश नाराजगी से अच्छे से वाकिफ थे और जानते थे कि ईशान की माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी उन्हें। कुछ ऐसा ही हाल साथ बैठी कशिश का भी था। कुछ देर सब साथ बैठे, फिर कशिश रात का खाना बनाने किचन में चली गई। उसकी मदद करने महिमा जी भी साथ चली गई। शुभ्रा और शुभिका पढ़ने चली गई। रजनी ने कमरे में जाकर कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर कमरे में आई तो उसका फोन बज रहा था। स्क्रीन पर अभिनाम शो हो रहा था।